साधारण तरह से जिनकी सुकृति कम है और संग भी कम है, वो लोग शुद्ध भक्ति को ठीक से समझ नहीं पाते। भक्ति एक ऐसी चीज है कि कृष्ण तक को भी आकर्षित कर लेती है, तो साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या। भक्ति क्या है? तन मन वचन और तीनों से अतीत जो भावना है, उन सब से ऐसी चेष्टाएं हो, तन से हो, मन से हो, वचन से हो, भावना से हो, हृदय से हो, जिससे कृष्ण प्रसन्न हो, जिससे भगवान प्रसन्न हो। और अपने लिए या शरीर संबंधी या अपने परिवार संबंधी या लौकिक या साधारण स्तर से जो स्वर्ग इत्यादि की जो सुख है, ये किसी चीज की भक्ति से कोई लालसा इच्छा नहीं होनी चाहिए। भगवान को प्रसन्न जब हम करना चाहते हैं तो जो क्रिया है उसको भक्ति तो कहेंगे, किंतु उसके द्वारा अपने लोक की कोई भी सुख की लालसा उससे नहीं करनी चाहिए, नहीं तो भक्ति नहीं हो करके बनियागिरी होती है। जैसे मसाला है, तुम पैसा दे दो, दो पैसे की पूड़िया बांध करके दे दो, तो बनिया ने एहसान हमारा किया, तो पैसा लिया। या इस आदमी ने भी उसका कोई एहसान किया, पैसा दिया, उसने मसाला दे दिया, अपना अपना काम अलग अलग। भक्ति ऐसी चीज नहीं है। भगवान के लिए जो भजन करते हैं, अपना कुछ भी यदि मांगा तो भक्ति बिगड़ जाएगी। कोई भी, यहां तक कि अपने क्लेशों को दूर करने के लिए भी भगवान से प्रार्थना मत करो। मैया से छोटा बेटा बच्चा जो है ये नहीं कहता है कि हमें मच्छर लग रहे हैं, हमें भूख लग रही है, वो क्या करेगा? रो देगा बस। मैया समझ जाएगी जैसे ये क्या चाह रहा है, वो ऐसे ऐसे पैर फेंक रहा, थोड़ी देर के बाद में वो करेगा तो मैया उसको पलट देगी। ये नहीं कहेगा जी हमको पलटो, हमें दूध पिलाओ, ये भी नहीं कहेगा, हमें मच्छर काट रहे ये भी नहीं कहेगा, केवल शरणागत हो जाएगा, रोए गया। मैया का अतिरिक्त किसी को नहीं जानता। यदि भगवान से कोई प्रार्थना करनी हुई तो फिर भगवान अंतर्यामी रहा कहां, दयालु कहां रहा? यदि उसे मांगना ही पड़ रहा है तो फिर भगवान कैसा? भगवान नहीं है, इसलिए वो सब कुछ जानता है। यू आर अंडरस्टैंडिंग समवट? जैसे बच्चा कुछ भी नहीं मांगता है किंतु मैया और बाप सब कुछ उसके लिए कर रहे हैं। जब जितना बड़ा होता जाएगी उसकी अपनी अकल आते जाएगी, उतना वो छोड़ते जाएंगे, तुम करो अब धरो। जब तक कुछ नहीं कर रहा है तब तक करें, जब करने लगेंगे, यहां तक कि जब कहेंगे अब अपनी हम शादी कर लेंगे, और उनके दो पर हो जाएंगे तो अपने आप उड़ जाएंगे, फिर तुम्हारे कहने से भी नहीं रुकेंगे, फिर बात नहीं सुनेंगे, फिर तुमको जो बच्चा नया होगा अब उसके लिए चलेंगे, ये ठीक होगा, वो तो नहीं, वो तो गड़बड़ हो गया। तो कोई भी संसार की वासना यदि हुई भजन में तो वो भक्ति नहीं हो करके, भक्ति जैसे दिखने पर भी भक्ति नहीं है, वो कर्म मिश्रा हो गई है ना। जहां पर कोई भी प्रार्थना है, जैसे हे नारायण देव आपका पूजन कर रहा हूं, आपकी शिरनी दे रही है, आपकी कथा हो रही है, पुत्रम देहि धनम देहि जसो देहि सुंदरी बारजांग दे सुंदरम पथिम देहि, जाएं ये प्रार्थना, ये श्रुत भक्ति गड़बड़ हो जाएगी, तो वो प्रभु उसको दे देंगे और अपने आप हट जाएंगे, फिर कोई संबंध नहीं। बनिया से मसाला लिया फिर वहां से चल दिए, बनिया से कोई जरूरत नहीं, ऐसे भक्ति क्या दे? और उसमें ज्ञान कर्म योग तपस्या यदि किया जाएगा तो हृदय कठोर बन जाएगा, उसकी भी उतनी जरूरत नहीं है। भक्ति में जो चीजें हैं, भगवान का गुणानुवाद करना, भगवान की कथा सुनना, भागवत सुनना, ये अपने आप इतने प्रबल हैं कि ज्ञान योग तपस्या ज्योतिषी और किसी चीज की भी कोई जरूरत नहीं है, अपने आप में भक्ति परिपूर्ण है। यदि कोई ऐसा भक्ति करता है तो सहज ही में भगवान उसे खींच आते हैं, और यदि उसको कोई असुविधा होती है तो पहली स्थिति में भक्त को तो कोई मुसीबत नहीं है, कभी कभी नहीं, कोई उनको कठिनाई नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस आदमी को हम जिसको कहते हैं ये प्रॉब्लम है, जैसे पति ने स्त्री को छोड़ दिया, ये बहुत बड़ा भारी प्रॉब्लम है ना, तो वो स्त्री कहेगी आज हमारा जन्म जन्म का सौभाग्य है कि आज हमको कृष्ण की सेवा करने के लिए मुझे मिल गया मौका, जरूरत ने बहुत कुछ देख लिया, अब उसके लिए क्या हो गया, वरदान हो गया, और भगवान उसका किसी न किसी रूप में उसको सब व्यवस्था कर देंगे। उसी तरह से श्रीनिवास थे महाप्रभु के भक्त, और उनका लड़का मर गया, अकेले ही लड़का था, घर के लोग रो रहे हैं, उन्होंने कहा जे बहुत अच्छा, सारा समय इसमें जा रहा था, वो अपना कहीं ना कहीं तो होगा, मरेगा तो कहाँ जाएगा, वो मर, मरने के बाद में जैसे शरीर छोड़ दिया तो हम समझने मर गया, तो मर करके कहाँ जाएगा, कुछ दूसरी जगह फिर जन्म ले लिया, तो वहां पर अच्छा है ठीक है, अब तो मुझे फुर्सत हो गई, अब दिन रात भगवान का भजन करूंगा। इस तरह से शुद्ध रूप में भगवान का भजन करना चाहिए, धीरे 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 जो हमारी संसार की चीजें हैं, कामनाएं हैं, ये सब छोड़ती जानी चाहिए। मान लिया कि हम भगवान से धन मांगा, धन लेकर के हम करेंगे क्या, खाने के लिए हमको जरूरत है, लेकर के तो जाना नहीं है इस जगत से। इसलिए यदि आत्मज्ञान हो जाए, कृष्ण का ज्ञान हो जाए, भगवत तत्व का ज्ञान हो जाए, जीवन का यही एकमात्र सार है। 88,000 ऋषि लोग, कलयुग आएगा, आ रहा है, यह जान करके बड़े भयभीत हो गए, कृष्ण का अपने धाम में चले गए, उनके साथ साथ जितने उनके साथ में ब्रजवासी और भक्त थे वो लोग भी करीब करीब चले गए। उद्धव को भगवान ने रोक दिया और बाकी सब चले गए, 88,000 ऋषि लोग एकत्र हुए नैमिषारण्य में। उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, सुत गोस्वामी से पूछा, भयंकर कलियुग आ रहा है, उस समय में बड़े अनर्थ होंगे, लोग बुराइयों में फंस जाएंगे, लोगों में दया नहीं रहेगी, दान नहीं रहेगा, लोग धीर शांत नहीं रहेंगे, संसारिक भोगों के लिए अत्यंत दुराचार भी लोग करेंगे। स्त्रियों और पुरुषों का हाल बतलाया है, ये कैसी दशा होगी, बड़ी भयानक दशा, अब मुझे क्या करें। लोग जो गाल बजाएंगे, अधिक प्रोपेगंडा करेंगे, वो साधु कहलाएंगे, साधु होकर के घर गृहस्थी करेंगे और कहेंगे जे गृहस्थ में अपनी स्त्री से बातचीत मत करो, अपने बाल बच्चों से मत रहो, अपने घर में पैसा मत दो, पैसा हमें दो, गुरु कहेगा, और कहे जे जगत में चारों तरफ प्रोपेगंडा कर दो जैसे ये परम महात्मा परमहंस है, जो जितना ही अधिक गाल बजाएगा, जितना ही अधिक प्रोपेगंडा झूठ, वो साधु है। इस तरह से बड़ी भयंकर दशा आएगी, क्या करना चाहिए। तत्र अंजसा यजुष्मन भवता यद विनिश्चित, इसलिए पुंसाम एकांत श्रेय, पुरुषों का एकांत रूप में कैसे कल्याण होगा, कैसे कल्याण होगा, आप निश्चित करके हमें बतलाएं। ये लड़की गाती थी वही है तो चार में जितने भी पुरुष हैं, वंस अबाउट 88,000 ऑफ ऋषि वेर कलेक्टेड इन नैमिषारण्य एंड देर वेर वेरी मच फियरफुल दैट कलि युग इज कमिंग। कलहम लाति इति कलि, कलह झगड़ा लाता है, सबसे झगड़ा कराएगा, इसलिए वो कलि है, किसी को स्थिर नहीं रहने देगा। वो तो बहुत सौभाग्यवान है जिसके घर में भगवान की कुछ भक्ति है, वो तो ठीक है, नहीं तो बाकी सब जगह वो कलह लाएगा। ये लड़की सुंदरी है, बेटा है, काम करने वाली है, कमाती है, और तो भी उसको डाइवोर्स क्यों, कोई भी मैंने बात नहीं, ये झूठ मूठ का, ये कली का काम है। इसलिए ऋषि लोग ऑल द ऋषि वर थिंकिंग व्हाट टू डू एंड दे केम टू सुत गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी के पास आए और बोले, पुंसाम एकांत श्रेय, मनुष्यों का एकांतिक रूप में कल्याण कैसे होगा, आप समस्त शास्त्रों से सार लेकर के आप हमें बतलाइए। कलयुग में आयु बहुत कम है, तुम लोग कुछ बोल देना, हम जो बोल रहे हैं ना ये, अथवा आप उन लोगों के लिए, नहीं तो हमको बहुत अधिक पर। कलयुग में आयु बहुत थोड़ी है, कितनी है, 10 वर्ष है, 100 में से तो आधा सोने में चला गया, सोती है, कितना सोती है दिन रात में, 24 घंटे में, हाउ मच यू स्लीप, 8 और भी सोती है, खेलती है कुछ ना, वो भी सोना ही है, वो किसी काम का नहीं, तो 12 घंटे हम लोग सो जाते हैं, और खेल तमाशा इधर उधर घूमने में इधर उधर में चला जाता है। तो ये आधा बूढ़ा होने पर भी और 20 वर्ष और बचपन का 20 वर्ष करीब करीब ये 40 वर्ष चला गया। आयु है 10 वर्ष, इसमें खाओ पियो शादी करो मौज करो जो कुछ करना है इसी में कर लो चाहे भजन करो, बहुत थोड़ी सी आयु। और कब होगी मृत्यु कोई भी ठीक नहीं, बचपन में होगी या वृद्धावस्था में। मंदा उनका बड़ा दुर्भाग्य रहता है क्योंकि पूर्व जन्म में अच्छा काम तो किया नहीं, अच्छा काम करने से तब तो उनको ये जन्म में सुख मिलेगा। मंदा काम करेंगे खूब अधिक, खोदा पहाड़ और मिली चूही, इतना परिश्रम करते हैं और चूहिया उसमें से निकल गई बस खत्म। मंदा सुमंद मतयो, और बुद्धि भी सार को ग्रहण करने में समर्थ नहीं, किसे कल्याण होगा किसे अकल्याण होगा ये उनकी बुद्धि में नहीं आता। वो समझते हैं कि मदिरा पान करने से, मांस खाने से, अंडा खाने से, रुपया खूब कमाने से बस और कोई चीज ये समझ, किंतु हमारा कल्याण कैसे होगा, हम आत्मा है इसके समझ में नहीं आती। मंद भाग्य उपद्रुता, अब तरह तरह के उपद्रव हैं, पास पड़ोसियों से भी बनेगी नहीं, इधर उधर से लड़ाई झगड़ा सब समय चित्त अशांत। भूरिणी भूरी कर्माणी, बड़े कठोर कठोर कामों को करेंगे। एक हमारे भारत के इन्हीं के संबंधी वो अमेरिका में आए, अभी कहां पर है कौन, वर्जीनिया में है, पिछले वर्ष हम लोग आए, अच्छा काम करते हैं पैसा भी खूब मिलता है, उन्हें एक साइड बिजनेस कर लें। तो साइड बिजनेस क्या किया, गोमांस का चलान। हमने कहा क्या कर रहा,
और कुछ मिला नहीं
है? अरे तुम अपना परिवार को नष्ट करेगा, तो उन्होंने छोड़ दिया। अब बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे, ऐसे कठोर कठोर काम करेंगे, निष्ठुरता पूर्वक काम करेंगे और कुछ मिलेगा नहीं। पूर्व जन्म में अच्छा तो किया है नहीं, इस जन्म में भी कुछ अच्छा करेंगे नहीं, ऐसे ही सब चीजें होती हैं। भूर कर्माणी सोत्रव्यानी विभाग, दिन रात इधर के उधर के कामों में, फजूल के कामों में रहेंगे किंतु भगवान का थोड़ा सा नाम नहीं करेंगे। अतः साधो अत्र जत सारंग समुद्धृत्य मनीष, इसलिए आप हमारा कल्याण कैसे हो आप बुद्धिपूर्वक विचार करके कहिए। जैसे सत्यनारायण की कथा होती है सुनने के लिए ही होती है, करने के लिए नहीं कुछ। इसमें सुनो उसको करो, जैसे मैंने इनसे कहा जरा पानी लाना तो ये बैठे रहे, मैंने कहा जो पानी लाना तो बैठे रहे, मैंने पूछा जो सुन रहा है तो हाँ सुन रहा हूँ, खूब सुन रहा हूँ, मैंने कहा जो तुम सुन नहीं रहे, सब लोगों से पूछे मैं सुन रहा हूँ, मैंने कहा जो सुन नहीं रहे तो सुनेगा कैसे, एक गिलास पानी लाएगा तब कहीं हाँ अब सुन ले। तो शास्त्रों के सुनने से ही नहीं होगा, उसके करने से होगा, जरा बोल दो तो उनको। और आप निश्चित करके ऐसी बात कहिए जिसके करने से हमारा कल्याण हो जाएगा जीवन, हमारा इस मनुष्य जीवन में आना सार्थक हो जाएगा। आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना मौज करना, बच्चे पालन पोषण करना, डरना किसी से और सो जाना, ये तो पशु भी करते हैं, यदि हमने किया तो अधिक क्या क्या कर लिया। इसलिए हमें बतलाइए। सुत गोस्वामी जी अपने गुरु जी को प्रणाम करके और बतलाने लगे, उन्होंने अपने गुरु जी को प्रणाम किया। उनके गुरु जी कौन है, सुखदेव गोस्वामी है, उनको प्रणाम किया। सबई पुनसांग परो धर्मो जतो भक्ति रथो कजे अहे तुक्य प्रतिहता जयात्मा संप्रसीदति। मनुष्य जीवन में उन्हीं का मनुष्य जीवन सार्थक है, उनका धर्म वही है। दजी जो भगवान है अधोक्षत अपनी आंखों से देख नहीं सकते, बुद्धि से उनका विवेचन नहीं कर सकते, इंद्रियों से हाथों से पकड़ नहीं सकते, किंतु फिर भी भगवान है। ऐसे भगवान के प्रति श्रद्धा हो और उनके प्रति यदि भक्ति हो, कैसी भक्ति जो पहले बतलाया, कोई भगवान से कुछ न किया। गोपियों ने भगवान से क्या मांगा, कुछ मांगा? कभी नहीं मांगा। यदि कृष्ण ने कहा जे कुछ दो, कुछ मांगो, तो गोपियों ने कहा जी अपनी सेवा दीजिए, तो ये मांगना हुआ कि नहीं? नहीं मांगना हुआ। आप प्रसन्न होकर के अपनी सेवा दीजिए, तो कृष्ण ने कहा जी तो मैं फिर ऋणी हो जाऊंगा। अच्छा, एक गोपी ने कहा जी जो हम मांगेंगे दे देंगे, तो कृष्ण जरूर दे देंगे। तो एक गोपी ने कहा जैसे हमने अपने सारे संसार के परिवार को, अपने पति को, पुत्र को, भाई को, बंधु को, धन को, संपत्ति को, अपने घर द्वार सब को छोड़ करके बस आपके चरणों में हमने समर्पण कर दिया है, वैसे ही आप ऐसा ही सब को छोड़ करके हमारे हमारे पास में रहिए। कहे ये तो हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तुम्हारे तो मैं केवल एक हूं और हमारे कितने हैं, विश्व में जिसको छोड़ दूंगा उसका ऋणी बन जाऊंगा, एक को छोड़ करके आने से लाखों का ऋणी बन जाऊंगा। इसलिए कृष्ण के लिए ऐसा संभव पर नहीं है। किसी भी भक्त को छोड़ देंगे तो फिर उनकी गड़बड़ी हो जाएगी, नहीं छोड़ सकते। गोपियां कर सकती हैं, सबको छोड़ करके एकांत रूप में कृष्ण का आश्रय ले सकते। भक्त भी अपने घर बार छोड़ करके, अब देखो ये लोग सब अपने घर बार, माता पिता भाई बंधु छोड़ करके और हमारे साथ में घूम रहे हैं, कोई काम नहीं करते, पंछी जैसे, इनका घर नहीं है, कुछ नहीं है। कृष्ण ऐसे कर सकेंगे, सबको छोड़ सकेंगे? इनके लिए, एक के लिए नहीं कर सकते। इसलिए रुक्मिणी को छोड़ देंगे ना, सत्यभामा को छोड़ देंगे न, प्रहलाद जी को छोड़ देंगे, किसी को भी नहीं, हनुमान जी को छोड़ देंगे, किसी को नहीं छोड़ सकते। गोपियां छोड़ सकती हैं, इसलिए गोपियों जैसा वो कृष्ण नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं न पारे हम निर्वध्य संजुजन, मैं सब समय तुम्हारा ऋणी हूं, तुम्हारा जैसा हमको नहीं कर सकते। एक चीज इसमें समझो, रुक्मिणी इत्यादि जो कृष्ण की पाठ रानियां हैं, है ना, कितनी है, 16,000 हैं, जिसमें 8 प्रधान है, 16,108 में से कृष्ण का अचल सुहाग उनको प्राप्त है, है ना। कृष्ण के साथ में द्वारकापुरी में रहती हैं, ऐश्वर्य का ठिकाना नहीं, लाखों नौकर चाकर हाथी घोड़े सब उनके हैं, लाखों दास दासियां हैं। और वृंदावन में कृष्ण तो थे किंतु वो अब चले गए हैं द्वारका में, गोपियों को छोड़ करके। किंतु लोग क्यों राधा कृष्ण अधिक कहते हैं, रुक्मिणी कृष्ण सत्यभामा कृष्ण नहीं कहते हैं, क्यों, कारण क्यों? रुक्मिणी जी सत्यभामा में कम सुंदरी थी, कम गुणवती थी, रूपवती थी, बहुत अधिक थी उस समय विश्व की रुक्मिणी भी सत्यभामा में, किंतु गोपियों के साथ में कृष्ण का, गोपीनाथ कहती हैं, राधानाथ कहेंगी, मदन मोहन माने ऐसे ही सब नाम करेंगे, ब्रज जशोदा नंदन कहेंगे। क्यों ऐसा? ब्रज के ही। इसलिए इस चीज को समझिए, द्वारकापुरी में यदि सत्यभामा के साथ में कृष्ण की शादी हुई, सत्यभामा ने अपना तन मन वचन जो कुछ था कृष्ण को समर्पण कर दिया है ना, उनकी सेवा में रहती है। किंतु एक उनको 10 बेटे हुए, तो पहला जब बेटा पैदा हुआ तो उनका प्रेम कितना भाग में बट गया? अब दो भाग में हो गया ना। लड़के ने प्रेम ले लिया और कुछ कृष्ण में रह गया, कुछ घर गृहस्थी के संवारने में, घर को ठीक ठाक करने में उसमें मन लग गया। इस तरह से मन उनका बिखर गया। और यदि 10 लड़के हुए तो 10 और कृष्ण एक 11 भाग में बट गया ना? तो कृष्ण के पल्ले कितना पड़ा? अंततः एक अधिक से अधिक 1/10। और एक लड़की भी पैदा हुई, तो लड़की पैदा होने से फिर वो 11 ही हो गया। और लड़की का जो पति है वो भी अपना बेटा ही तो है ना, तो वो और बट गया। और उस लड़की को बाई चांस कोई लड़का हुआ या अपना नाती हो गया तो अपनी पोते को संभालेगी ना, पति को भोजन कराने जाएगी, कहिए सब थोड़ा सा ठहर जाइए, मैं अपने पोते को जरा देख लूं। तो इस तरह से उनका प्रेम बट जाता है। और ब्रज की गोपियों को कोई बेटा है? पति के प्रति ताश ने वो भी छोड़ दिया, संसार के प्रति भी छोड़ दिया, उन्मत्त हो गई, बस कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं। इसलिए गोपियों का प्रेम अखंड है और उन लोगों का प्रेम बटा हुआ है, इसलिए उनसे लाखों गुणी श्रेष्ठ है। कृष्ण चाहते हैं अखंड रूप में प्रेम लेना, तब वो वशीभूत होते हैं। ये सब है भक्ति के विचार, है ना। ये कहते हैं ऐसे यदि मनुष्य मात्र, प्राणी मात्र यदि कृष्ण के प्रति, पंखा चला ना भाई, पंखा क्यों नहीं चला रहे? भगवान का जैसे भगवान की कथा कह रहे हैं, एक पैसे का कोई अर्थकार प्रश्न नहीं होना चाहिए। प्रभु से कुछ मांगना नहीं, प्रभु सब समर्थ हैं, जानते हैं सब कुछ, उनसे प्रार्थना क्या करना है, मत कुछ करो, मुक्ति की भी चाहना ना हो। ऐसा यदि कोई करता है, वासुदेवे भगवती, जो वासुदेव जो भगवान है, वासुदेव कौन है? कृष्ण है। वासुदेव कृष्ण का यहां तात्पर्य, वासुदेव उनका भी नाम है नंद बाबा का, क्योंकि शुद्ध सत्व है, इसलिए उनका भी नाम है। एक ही वंश है, एक ही वंश में एक राजा के 2 स्त्रियां थी, एक से सूरसेन हुए और दूसरे से परजन्य हुए। परजन्य का लड़का वो गोपी से उत्पन्न होने से नंद बाबा हुए, और उधर में सूरसेन से वसुदेव जी हुए। ये दोनों अपने को भाई कहते थे, इसलिए वसुदेव जी का पुत्र और नंद बाबा का पुत्र दोनों एक ही हैं, ऐसा समझो, कुछ रस का विचार है। तो यहां पर आगे ये कहेंगे, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं जज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। भगवान की सेवा करने से, उनका भजन करने से हमारे ये कष्ट सदा के लिए दूर हो जाएंगे, जगत में जन्म मरण बंद हो जाएगा और सदा के लिए मुक्त होकर के भगवान की सेवा में सदा के लिए नियुक्त हो जाएंगे, बस आनंदमय जीवन रहेगा। तो इसमें इन्होंने कहा, वदन्ति तत्त्वविदस्, जो तत्व को जानने वाले हैं वो अद्वैय ज्ञान तत्व को तत्व कहते हैं। अद्वैत ज्ञान किसको कहते हैं? कृष्ण और उनके जितने अवतार हैं, जितनी शक्तियां, चित जगत है, वैकुंठ जगत इत्यादि, जीव जगत है, जितने जीव हैं और जड़ जगत है, ये सब कृष्ण से ही पैदा हुए हैं, इसलिए कृष्ण से अभिन्न है, इसलिए इनको अद्वैत ज्ञान तत्व है सबके साथ में। जैसे एक राजा, राजा कहने से रानी भी होगी, राजकुमार भी होंगे, राज्य भी होगा, मंत्री परिषद होगा, हजारों प्रजाएं होंगी, उनकी सेनाएं होंगी, ये सब मिलकर के राजा है। ऐसे कृष्ण कहने से, भगवान कहने से, सबको मिला करके भगवान कहते हैं। ऐसे भगवान की जो सेवा है उसको कहते हैं भक्ति। तो वो तीन प्रकार से दिखते हैं, तीन प्रकार की साधना से, उन्हीं को ब्रह्म कहते हैं, उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, उन्हीं को भगवान कहते हैं। जो भगवान दिखते नहीं है, उनका आकार नहीं है, उनके अंग की ज्योति का नाम ब्रह्म है, जिसको लोग, योगी लोग, जिसको ब्रह्मवादी लोग, अद्वैतवादी लोग निराकार ब्रह्म कहते हैं, और अंत में उनमें मिल जाने की चेष्टा करते हैं। और दूसरा परमात्मा, जो हमारे हृदय में इतने अंगूठ परिमाण के रूप में, साक्षी के रूप में है, उनको कहते हैं परमात्मा। और जिनका रंग है, रूप है, नाम है, अखिल विश्व का संचालन सब कुछ वही जो करते हैं, वो भगवान है। इन दोनों में से यहाँ पर ये नहीं बतलाया कि तुम ब्रह्म की या परमात्मा की सेवा करो, किसकी सेवा करो? भगवान। इसलिए सवई पुंसांग परो धर्मो जतो भक्तिर अह।